इन पिछले अध्याय में आपने देखा कि रीता और मानवी बालकनी से कमरे में आई। मानवी अभी भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंची थी और बलवंत ने अवनी को गोद में उठाया हुआ था। बलवंत ने मानवी और वेद से एक सार्वजनिक घोषणा करने का फैसला किया कि वे एक युगल हैं जो अब अपनी बेटी के लिए एक साथ आ रहे हैं। मानवी ने अनिच्छा से सहमति जताई और वेद को भी पालन करना पड़ा। अब अगला, घर के बच्चों दीपक, सुधीर, सुधांशु, कियारा और सिया को किसी भी बात से कोई शिकायत नहीं थी। बस सबके मन में यही सवाल था कि वेद ने ऐसा कब और कैसे किया। वैसे भी अवनी से दीपक, सुधीर और सुधांशु की दोस्ती अच्छी हो चुकी थी, लेकिन वेदांत, उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं है कि वेद की शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी है। नीचे हॉल में बड़े लोग बलवंत मेहरा और वेदिका गंभीर चेहरों के साथ बैठे थे। तभी कमरे का दरवाजा खुला और वेद मानवी के साथ बाहर निकला। जैसे ही दोनों बाहर आए, घर के लड़के शरारत भरे अंदाज में चारों तरफ से उन्हें घेर कर खड़े हो गए। सुधीर ने हंसते हुए कहा, भाई रे, ये सब कब हुआ? शादी भी कर ली और हमें खबर तक नहीं। सुधांशु बोला, कमाल है भाई, इतना बड़ा राज और तुमने हमें बताया तक नहीं, कब कहाँ कैसे। दीपक भी मजाक में बोल पड़ा, अब तो पूरा हिसाब देना पड़ेगा। लड़कियां भी पीछे क्यों रहती, सबकी नजरें मानवी पर टिक गईं। तभी रुचिका आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए मानवी के गले लग गई। मैं तुम्हारी होने वाली देवरानी हूँ। मानवी उस वक्त इस हालत में नहीं थी कि सचमुच मुस्कुरा सके, फिर भी उसने हल्की बनावटी सी मुस्कान दी। घर के लड़के अब वेद से सीधा जवाब चाहते थे। सब एक साथ बोल उठे, भाई कुछ तो बताओ, आखिर हुआ क्या है। वेद ने सबकी तरफ गौर से देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ आंख दबाते हुए बोला, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे भाई की जिंदगी में वही होता है जो तुम्हारा भाई चाहता है। ये सुनते ही सब हंस पड़े, लेकिन माहौल में फिर भी रहस्य बरकरार था। वेद ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, बाकी की बातें बाद में होंगी। ये कहते हुए वो मानवी की तरफ बढ़ा। इस बीच रुचिका और सिया, जो पहले से मानवी के साथ खड़ी थी, उसे संभाले हुई थी। वेद ने मानवी की तरफ देखकर धीरे से कहा, चलो मानवी, हमें नीचे जाना है। फिर वो अपने सभी भाई बहनों के साथ नीचे की ओर बढ़ गया। दूसरी ओर वेदांत का चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी आंखें रीना पर टिकी थीं, क्योंकि वो उसे वारिस नहीं दे सकी थी। बहुत बढ़िया, तो लॉन में गाने बजाने का प्रोग्राम अधूरा ही रुक गया था। सब मेहमान सोच में पड़ गए थे कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। राजवीर सिंह शेखावत, जो शेखावत परिवार के बड़े थे और पूरे कार्यक्रम पर नजर रखे हुए थे, तुरंत स्थिति को संभालते हुए बोले, सभी मेहमानों को खाना परोस दो और फिर उन्हें उनके कमरों में भेज दो। फैमिली की बातें फैमिली के अंदर ही रहनी चाहिए। सारे गेस्ट ऊपर चले गए, नीचे हॉल में सिर्फ मेहरा परिवार था। बलवंत मेहरा की बात जैसे ही खत्म हुई, वेद और मानवी हॉल में आए। बलवंत साहब ने सख्त मगर सधे हुए लहजे में कहा, वेद, बहू का सामान उसके कमरे में ले आओ और अवनी को भी अब आराम चाहिए। अवनी, जो अब तक वेदिका की गोद में थी, अपनी माँ को देखते ही तुरंत मानवी की गोद में चली गई। मानवी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अपनी बेटी की मासूम मुस्कान देख उसे थोड़ी राहत मिली। वेद, बलवंत और वेदिका जिस तरह से अवनी से बात कर रहे थे, उससे अवनी तो खुश थी, मगर मानवी का दिल अंदर से डरा हुआ था। इसी बीच अयान का मैसेज वेद के फोन पर आया, क्या हुआ, सब ठीक है ना। वेद ने जल्दी से जवाब टाइप किया, नीचे लॉन में आ जाओ, यहीं बात करेंगे, ऊपर इतना मौका नहीं मिलेगा। फिर उसने मानवी की ओर देखा और कहा, चलो तुम्हारा सामान गेस्ट हाउस से ले आते हैं। मानवी ने धीमे स्वर में कहा, कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगी, रीता मेरे साथ है। रीता और मानवी गेस्ट हाउस की ओर चल दिए। चलते चलते मानवी की आंखें भर आईं। रीता ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा, क्या हुआ मानवी, क्यों रो रही हो। मानवी टूटी हुई आवाज में बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा रीता, मैं बहुत परेशान हूँ। रीता ने उसके आंसू पोंछते हुए दृढ़ आवाज में कहा, जब शादी के वक्त तुमने खुद को किस्मत के हवाले कर दिया था, तो अब भी कर दो। देखो शादी हो चुकी है, एक बेटी है, अब सिर्फ अवनी के बारे में सोचना है। वेद चाहे जैसा भी हो, मगर उसने साबित कर दिया है कि अवनी उससे बेहद प्यारी है, और बलवंत साहब जैसे लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, अब डरना मत। इसी दौरान कमरे के पास शेखर खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। मानवी को देखते ही वो उनके साथ अंदर आ गया। उसकी आंखों में गिल्ट था। सॉरी मानवी, मुझे नहीं पता था कि जिंदगी इतनी जल्दी बदल जाएगी, वरना मैं तुम्हें शादी के लिए कभी हाँ नहीं करता, मगर अब मुझे खुशी है कि वेद अवनी से बहुत प्यार करता है। बलवंत साहब भी तुम्हें स्वीकार कर चुके हैं। अगर कभी जिंदगी में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हारी मदद करना मेरे लिए सौभाग्य होगा। बस खुश रहना, तुम्हारी खुशी ही मेरी सुकून है। ये कहकर शेखर कमरे से बाहर चला गया। बाहर एक वेटर को मानवी का बैग थमाकर वेद के कमरे की तरफ भेज दिया। रीता ने मानवी का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब मैं चलती हूँ, आगे का सफर तुम्हें खुद तय करना है। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। अगर कभी कोई मुश्किल आई तो मुझे जरूर बुलाना, मैं हर सुख दुख में तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर रीता भी चली गई। मानवी ने धीरे से वेद के कमरे का दरवाजा खोला। अंदर बलवंत मेहरा और वेदिका पहले से बैठे थे। आओ बेटा, बलवंत मेहरा ने स्नेह से पुकारा। मानवी सोफे पर बैठ गई। कमरे में डिनर मंगाया गया था क्योंकि किसी ने कुछ खाया नहीं था। मानवी का खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन सबके बीच उसने थोड़ा बहुत खा लिया। खाते हुए उसकी नजर बार बार अवनी पर जा रही थी, जो वेदिका और बलवंत के पास हंसते हुए खेल रही थी। ये देखकर मानवी को पहली बार थोड़ी शांति महसूस हुई कि उसकी बेटी को प्यार करने वाले लोग मिल गए हैं। डिनर खत्म होते ही बलवंत मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं। कोई भी समस्या हो मुझे तुरंत फोन करना। याद रखना, मैं सिर्फ इसका यानी वेद का डैड नहीं हूँ, तुम्हारा भी डैड हूँ, अवनी तुरंत बीच में बोली। और मेरा? बलवंत मेहरा हंसते हुए बोले, हाँ बेटा, और मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करता हूँ। वेदिका ने प्यार से अवनी की ओर देखकर कहा, अभी तुम हमारे साथ चलोगी अवनी? मानवी ने तुरंत बीच में कहा, प्लीज आंटी, अवनी को यहीं रहने दीजिए। वेदिका मुस्कुराकर बोली, मुझे आंटी मत कहो, मुझे मॉम कहो, अवनी कहीं नहीं जाएगी, ये उसे अपनी मॉम के साथ रहने दो, बलवंत मेहरा ने वेदिका से कहा। ये कहते हुए बलवंत और वेदिका कमरे से बाहर निकल गए। अब कमरे में सिर्फ तीन लोग थे, वेद, मानवी और अवनी, एक नई शुरुआत की चौखट पर खड़े हुए। मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूँ, ये कहकर वेद कमरे से बाहर निकल गया। अब कमरे में सिर्फ मानवी और अवनी रह गई थी। वेद के जाते ही मानवी ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। तभी अवनी भागकर उसके पास आई और मासूमियत से बोली, मम्मा कितना अच्छा रूम है। कोई शक नहीं था, गेस्ट हाउस के कमरे इतने अच्छे नहीं थे, ये 5-स्टार होटल का स्वीट था। मानवी ने मुस्कुराकर अवनी से कहा, चलो बेटा, अब तुम्हारे कपड़े चेंज करवा देती हूँ। उसने सोफे पर रखा अपना बैग खोला और जल्दी से अवनी के कपड़े बदलवा दिए। थोड़ी देर बाद मानवी ने खुद भी कपड़े बदल लिए। उसके दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि उसे वेद से बात करनी है। बहुत सारी बातें जो इतने सालों से उसके दिल में दबी थी, लेकिन अफसोस, वेद कमरे से निकल चुका था। वह दरवाजे तक आई और देखा कि बाहर सन्नाटा है। इस बीच वेद नीचे लॉन में पहुंच चुका था, जहां अयान उसका इंतजार कर रहा था। वेद ऐसे ही होटल के बाहर लॉन में पहुंचा। उसने देखा कि एक टेबल पर अयान बैठा हुआ है और वेद का इंतजार कर रहा था। वेद सीधे उसके पास जाकर बैठ गया।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना याद रखें।